ओम शांति। अभी अभी आपके मन में जो भी प्रश्न है, हमारे स्टेज पर नेहा दीदी और सुमन दीदी बैठेंगे और आपके मन के जो भी प्रश्न है वो प्रश्न का उत्तर देंगे। किसी को भी कोई मन में प्रश्न है उनको माइक दिया जाएगा और एक एक करके आप सभी आपके जो भी प्रश्न है वो पूछेंगे और हमारे सन्मुख हमारे नेहा दीदी और सुमन दीदी बैठे हैं, वो आपको उसका उत्तर देंगे। किसी को भी कोई प्रश्न है? नीचे माइक रखा है, स्टेज के नीचे माइक रखा है, वो आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।
ओम शांति। पहले सबसे पहले बाबा का थैंक यू और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कि इतना स्ट्रांग अनुभूति हुई। एक प्रश्न है, इतना सब कुछ लेक्चर्स क्लासेस सब कुछ करने के बाद भी देहधारी को याद मत करो, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बारी बारी सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ, फिर भी देहधारी याद आता है, तो उसका क्या उपाय?
देहधारी फिर भी याद आते हैं, इतना सारा जैसे भट्टी किया उसके बाद भी देहधारी याद आते हैं, क्यों?
आधा कल्प का संस्कार है ना, तो वो अभी इतना जल्दी नहीं जाता है, तो इसीलिए अभ्यास आत्मा अभिमानी स्थिति का जितना हम अभ्यास करते जाएंगे उतना वो नेचुरल बनता जाएगा। क्योंकि अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे ये नेचुरल है, बॉडी कॉन्शियसनेस ये नेचुरल है, तो इसीलिए अभी अचानक जब ज्ञान मिला तो फिर अभ्यास करना शुरू किया। तो अभ्यास करते तुरंत तो नहीं होगा ना, जैसे अगर बहुत बड़ी बीमारी है मेडिसिंस देना शुरू करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 10 दिन में 15 दिन में एक मास में हम वो तबीयत ठीक हो जाए बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत क्रॉनिक बीमारी है तो फिर लंबे काल तक हमें वो मेडिसिन लेना पड़ता है, तब जाकर के कुछ सुधार आता है शरीर में। ऐसे भी एक्सरसाइज भी जब हम करते हैं तो एक्सरसाइज भी रोज जब हम करते हैं तब जाकर के 3 मास में 4 मास में उसका रिजल्ट शरीर में दिखाई देना शुरू करता होता है। ऐसे ये तो बीमारी हमारा कितना पुराना है, 2500 वर्ष की बीमारी है, तो वहां से शुरू हुआ है द्वापर युग से, तो फिर लंबे काल का अभ्यास बाबा इसीलिए कहते हैं बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। तो इसलिए लेकिन फिर निरंतर, इस बहुत काल का मतलब ये भी नहीं है कि मास में एक बार योग कर लिया, हफ्ते में एक बार योग कर लिया तो फिर उसका असर पड़ेगा 3-4 साल के बाद, नहीं। हर रोज जब हम अभ्यास करते हैं वो अनुभव करते हैं आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास, जितना ज्यादा हम करते जाएंगे मन को उसको फीड करना पड़ता है, बार 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 मन को याद दिलाना पड़ता है, जितना गहरा अभ्यास है तो फिर वो फिर नेचुरल होना शुरू हो जाएगा। ठीक
है, आपको सभी को क्लियर हुआ? क्योंकि दीदी ने बहुत सुंदर उसका आंसर दिया, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास, जैसे हम हर रोज जो भी वर्क करते हैं वो कई बार 16 घंटे करते हैं, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो कितना समय बैठते हैं? 5 मिनट, एक घंटा दो घंटा है, जैसे उषा दीदी ने आज बहुत सुंदर बताया ना कि निरंतर योग का प्रयोग करेंगे, तो ये निरंतर योग का प्रयोग करेंगे तो देही अभिमानी अवस्था में रहेंगे। और किसी का प्रश्न है भाइयों की तरफ से? आइए कल्पना बेन आइए, आपके प्रश्न है? नहीं, और किसी को प्रश्न है?
जिनको भी प्रश्न है,
जिनको आगे भी प्रश्न है वो आगे आ जाएं ताकि आपको आने में समय न लगे।
ओम शांति दीदी।
आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं?
बीनापानी विश्वास, महाराष्ट्र चंद्रपुर।
अच्छा, आपका नाम?
बीनापानी विश्वास।
ओके ओके,
बीके। बाबा क्या बोले, बच्चे मेरे लिए थोड़ा रो के तो देखो, कुबेर का भंडार ना खोल दो। तो हम तो चार दिन का भाट्टी किया, बाबा के लिए रोए ही नहीं।
अच्छा, आपका प्रश्न क्या है?
प्रश्न कुछ भी नहीं,
प्रश्न
सिर्फ रोना है बाबा के लिए, मुझे थोड़ा रुला दीजिए।
अच्छा, वेरी गुड,
खुशी। ओम शांति।
वेरी गुड।
रोना है नहीं, हंसता है ना बाबा के लिए। बाबा कभी नहीं कहता है कि रोना है। प्यार के आंसू भले आए, रोना नहीं है। बाबा कभी रुलाता नहीं है किसी को भी। बाबा ये कहते थे, ब्रह्म बाबा भी ये कहते थे, रोने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं है। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है रोने वाले बच्चे, है ना? शिव शक्ति है, स्ट्रांग है।
और किसी को कोई प्रश्न है? आई आई भाई।
ऑन है, ऑन है।
ओम शांति बहन जी। बहन जी, मेरा प्रश्न है, मैं सरदार भाई हूँ दिल्ली से, मेरी बिहार से, और मैं सन 2000 से यहाँ से जुड़ा हूँ। सन 2000 में पहली बार आबू आया था और वहाँ सेंटर पे मेरा कनेक्शन रहा। तो मेरा सवाल ये कि मुझे लगाव तो बहुत रहा, पहले मैंने रेगुलर क्लास नहीं की।
थोड़ा मास्क निकाल के बोलेंगे, थोड़ा स्पष्ट होगा
जी। मेरा सवाल ये कि मैं रेगुलर क्लास तो मैंने अटेंड नहीं की, लेकिन बहुत लगाव बाबा के परिवार से, सेंटरों से, सेवाओं से रहा। लेकिन अब पिछले 5-6 साल से मुझे बहुत एक रट हो गई। मैं सुबह सोमानों में 2-2.5 घंटे मुरली सुनने में सभी सेंटर्स की, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, या सेंटर पर सेवा में। लेकिन उससे थोड़ा सेंटर की बहनें बहुत खुश नहीं होती, वो कहती है सुबह मुरली क्लास आओ तब ठीक है।
थोड़ा सा दूर रखिए माइक, थोड़ा स्पष्ट, थोड़ा दूर।
आपका प्रश्न जो है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है
जी।
आपका प्रश्न बताइए।
प्रश्न ये है जी कि जो सुबह मैं मुरली सुनता हूँ यूट्यूब पे, और सेवा में मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, लेकिन सुबह मैं जो ना क्या कहूँ कि योग जो करता हूँ, मैं अपने सारे काम करते हुए योग करता हूँ, मैं वहाँ जाकर सेंटर पे योग नहीं करता। और जो है क्लास भी जो सारी यूट्यूब पे जाकर सुनता हूँ। तो मैं, मेरा सवाल ये है कि क्या ये ठीक है, क्योंकि मैं उस तरह एडजस्ट नहीं हो पाता सुबह जाके सेंटर पे वो सुन। तो इसमें मुझे कुछ
गाइडेंस चाहिए।
गाइडेंस चाहिए।
नेहा दीदी बताएंगे।
बल्कि अब मैंने आके यहाँ नियमित 2:30 बजे उठ के 3 बजे योग किया 5 दिन से। उससे पहले कभी मैंने 3:30 बजे आके, उससे पहले मैंने कभी इतने सुबह योग नहीं किया क्लास में आके, और बस काम करते हुए सारा योग किया। सोमानों में 2-2.5 घंटे रहते योग किया। तो क्या वो ठीक है या
बताएंगे ये? नेहा दीदी बताएंगे।
ओम शांति। आप बैठ जाइए। भाई का सवाल तो आप सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन था और हम सभी को घर में बैठना था, इसलिए ऑनलाइन की सेवाएं यूट्यूब के द्वारा शुरू हुई। तो समय के हिसाब से वो ठीक था कि हम सभी ने घर पे ही बैठ करके मुरली सुनी, योग तपस्या की और काफ़ी हमने अनुभूति की। लेकिन अभी जैसे भाई ने पूछा कि अभी वो ही करना अच्छा लगता है, जाकर के सेंटर पर मुरली न सुने और यही करे, ये ठीक है। बाबा की जो श्रीमत है, बाबा के घर सेंटर पे जाना और सन्मुख बाबा की मुरली सुनना, ये हमारा नियम बना हुआ है। और बाबा की हर आज्ञा में बहुत फायदे होते हैं, तो जो भी हमारे नियम बने हुए हैं उसी आधार से हमें सेंटर पर जाना है, वहाँ योग करके वहाँ की मुरली सुननी है। अगर आपको रिवाइज करनी है तो यूट्यूब पे आप बाद में दोबारा रिवाइज कर लो मुरली, लेकिन सुबह क्लास में जाना ये बाबा की आज्ञा पालन है, उनके एक्स्ट्रा मार्क्स और बाबा की दुआएं मिल जाती है, तो ये तो ज़रूर करना है। तो सभी भाई बहनों के लिए यही हमारा सुझाव है कि ऑनलाइन में, क्योंकि ये एक बहुत आदत हमको पड़ गई है कि भाई घर पे बैठ के सामने मुरली चल रही है, तो एक कंफर्ट जोन हमारा हो गया कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और जो भी हमें जिस मुरली सुननी है हम वो सुन सकते हैं। वो उस समय के लिए था, अभी तो जैसे हम जिस सेंटर से कनेक्टेड है उसी सेंटर पे जाकर वही सन्मुख मुरली सुनना, यही बाबा की श्रीमत है, हा? तो उसमें आप अपने आप को फिर से ढाल दो तो वही फीलिंग आपको आ जाएगी। फिर रिवीजन करना है तो आप दोबारा मुरली सुन लो, ठीक है? क्लियर हुआ?
सुमन दीदी, इसके बारे में आप भी कुछ बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन।
दीदी ओम शांति, मेरा नाम बीके मानव है, चंद्रपुर। मेरा एक सवाल है, अनुभूति से है कि कई बार संदेश में बाबा कहते हैं कि आपको, आप सभी आत्माओं को इमर्ज किया वतन में, तो क्या उस समय हमें फीलिंग आनी चाहिए या आती है? वो मुझे, क्योंकि वो नहीं आई है कि बाबा कहता है कि आपको इमर्ज किया है, तो क्या वो आती है या आनी चाहिए? एक सवाल था, मन में एक जिज्ञासा है।
सुमन दीदी,
बाबा जब इमर्ज करते हैं, सूक्ष्म शरीर को इमर्ज करते हैं, अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो शायद वो फीलिंग, ये फीलिंग जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट वही फीलिंग आएगा कि बाबा मुझे इमर्ज किया, लेकिन फिर कुछ शक्ति का संचार या कुछ ऐसे वाइब्रेशन, कुछ एनर्जी, कुछ हम फील करते हैं बाबा के साथ योग, उस समय अच्छा लग जाता है। लेकिन फिर उसी स्थिति में अगर होते हैं, जैसे भोग लग रहा है सब जगह पर, हम योग में बैठे हुए हैं, तब बाबा ने इमर्ज किया, हम भी योग में बैठे हुए हैं, तब वो फिर वो शक्ति, वो प्यार, वो जो भी बाबा जो भी दे रहे हैं, वो वाइब्रेशंस हमें फील होता है। लेकिन जब बाबा इमर्ज करते हैं लेकिन हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, देह भान में हैं, तो उस समय वो फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि भले बाबा दे रहे हैं एनर्जी, लेकिन फिर वो इंसुलेशन हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है बॉडी कॉन्शियसनेस का, तो वो फीलिंग नहीं भी आ सकता है। लेकिन हमारी स्थिति अच्छी होती है, या फिर केवल सोल कॉन्शियसनेस में, आत्मिक स्थिति में भी स्थित होते हैं, योग में बैठे हैं, तो फिर जरूर वो फीलिंग जरूर आएगा। भले एक्यूरेट वो बाबा क्या कर रहे हैं वो कभी कभी महसूस नहीं होगा, लेकिन फिर योग बहुत अच्छा लगने लगता है उस टाइम पे, है ना? कुछ ऐड करना है?
ओम शांति। हम जमशेदपुर सेंटर से आए हुए हैं, 3 साल से हम इस संस्था से, ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़ी है। इनिशियली हम पूरे भक्ति मार्ग के थे, भारत के ऐसे कोई जगह नहीं है, इवन अमरनाथ नहीं है, जहां हम वॉकिंग से दर्शन नहीं किए। लेकिन मेरा परिवर्तन तभी हुआ जब हम 2019 में ब्रह्मकुमारी में आए थे, आपका मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, वो मेरा शुरुआती था। वो जब आए तब हम देखे जिसका लिए हम सारा दुनिया भटकते रहे वो तो यहीं पर है, हमको जो मिलना था हमको तुरंत मिल गया और हम तब से इसका साथ जुड़ित हो गए हैं। तो मेरा 2 क्वेश्चन है। एक है, जब से हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली का धारणा, वरदान, स्लोगन रोज का, एवरी डे इतनी अच्छी है जो हम किस कौन दिन का किस से हटाएं। लेकिन इसका मेन है, जब जरूरत पड़ता अब मुरली का ये चीज आप यूज में लाइए, उसमें मेरा थोड़ा कमी आ रहा, हम उसमें नहीं कर रहे। पर दूसरी बात है, आपका ब्रह्मा कुमारी का गीत इतनी अच्छी गीत है जो सब महान कलाकार लोग ने गाए हैं। हम थोड़ा गीत में शौकीन हैं, थोड़ा गीत गा भी सकते हैं, ऑनलाइन में भी गाते हैं, तो कुछ कुछ गाना हम ख्याल किए हैं, बहुत सारा गाना जो हिंदी गाना का साथ में मिलता है थोड़ा बहुत। तो मेरा प्रश्न है, हमें केवल ब्रह्मा कुमारी का गाना ही करना है ना? कोई जैसे भक्ति मार्ग का गाना होगा, कोई देशभक्ति का गाना होगा, उसको भी हम कर सकते हैं? यही चीज है। ओम शांति।
मिया दीदी बैठिए। भाई ने जो पहला प्रश्न पूछा, बाबा की मुरली, बाबा की मुरली तो हम ब्राह्मणों की जान है, आधार है।
थोड़ी देर बैठिए, वो उत्तर मिलने के बाद फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
तो मुरली सुनते हैं, अच्छा लगता है, धारणा, सार, वरदान, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने में अंतर हो जाता है। इसके लिए जैसे बाबा ने कहा, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि बाबा हमें जो कह रहा है, जो हम मुरली में सुनते हैं, उन बातों पर हमें सिर्फ सुनने ही लेना है, मनन चिंतन करना है। जब कोई भी बात को, जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि गैया होती है, वो फिर उगारती है खाने के बाद, तो बाबा की नॉलेज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक शांति से एकांत में बैठकर मैंने उन बातों पर चिंतन नहीं किया, अर्थात अपने आप के अंदर नहीं उतारा, उसको रियलाइज नहीं किया, तब तक वो परिवर्तन आने में अंतर हो जाता है। इसके लिए एक बहुत सुंदर विधि है कि जब भी आप बाबा की मुरली सुनते हो तो सबसे पहले तो बहुत एकाग्रता से, बाबा ने जो विधि बताई है मुरली सुनने की, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो बाबा के महावाक्य सुनते हो वो साथ साथ फील करते जाओ। जहां जहां बाबा ऐसी बातें करते हैं, जैसे बच्चे आप देवता थे, आपको देवता बनना है, आप फरिश्ता बनने वाले हो, तो अपने उस स्वरूप को आप साथ साथ विजुलाइज करते जाओ। एक्सेप्ट कर ले हमारा माइंड और इंटेलेक्ट कि हे आत्मा, सचमुच तू ही ऐसे देवकुल की आत्मा थी। फरिश्ता स्वरूप को बाबा याद करते हैं, उनको भी आप फीलिंग में लाओ, एक ये भी विधि है। दूसरा, आप उन बातों पर मनन चिंतन करो थोड़ा भी, तो बुद्धि में छपता जाएगा। तीसरी बात, कोई भी धारणा के लिए बार बार अटेंशन, जिसे दादी जानकी भी कहती थी, अटेंशन और चेकिंग। आज मुरली में बाबा ने ये जो बातें कही है उसमें से मैं एक बातें लूं, दो बात लूं, उस पर पूरा अटेंशन मुझे उसे धारण करना ही है, उसको प्रैक्टिकल में लाने का एक लक्ष्य रखो। तो जब लक्ष्य होगा, अटेंशन होगा, तो काफी अंतर आ जाएगा। मूल बात यह है कि जितनी आपकी योग की गहराई बढ़ेगी, बाबा ने कहा है कि याद से ही धारणा होगी, बाबा से आपका जितना गहरा योग होगा, जैसे आगे भी बहन ने पूछा था प्रश्न, जितनी गहराई से आप बाबा की याद में मगन होते जाएंगे, बीज रूप स्थिति बाबा के प्यार में, याद के द्वारा ही आत्मा के अंदर धारणा होती जाएगी। अगर हम ये सोचें कि बस योग तो हम थोड़ा बहुत कर ले, मुझे धारणा करनी है, बिगर याद की तपस्या से धारणा नहीं होती, तो आप अपने योग का चार्ट बढ़ाओ, योग की गहराई में जाओ, प्यार से बाबा की याद में मगन हो जाओ। जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाएगी, फिर जो डिवाइन एनर्जी आती है उनसे परिवर्तन होगा और धारणा होगी। और बाकी जो आपने गीतों की बात कही, गीत तो बाबा ने पहले तो हम बाहर के गीत, बाबा भी मुरली के समय हम यूज़ करते थे, अभी तो बाबा के घर के गीत बने हैं। गीत का आधार हम इसीलिए लेते हैं कि बाबा की याद में हमारा मन एकाग्र हो जाए, है ना। हमें तो अपनी बुद्धि को और सब जगह से हटाना है, तो बाहर के गीत गाना और सुनने की मना नहीं है, लेकिन जब मुझे भगवान की याद में बुद्धि को एकाग्र करना है, तो वही शब्द हम सुने जो मुझे देह भान से परे ले जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित होने में मदद करे और बाबा से जुड़ने में मदद करे। ठीक है, ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओम शांति दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन है कि मैं ज्ञान में करीब 10-12 साल से चल रही हूँ, लेकिन मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर पाती हूँ। क्रोध शांत नहीं कर पाती हूँ, मुझे वैसे गुस्सा इतनी आसानी से नहीं आता है, और जब आ जाता है ना दीदी, मैं क्या तोड़ फोड़ कर देती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता, बहुत नुकसान कर देती हूँ अपना खुद का ही मैं, और फिर बाद में पछतावा भी होता है।
कब से ज्ञान में है
दीदी? मुझे 10-12 साल हो गए,
लेकिन 10-12 साल,
हाँ मतलब ठीक तरीके से हो गए 8-10 साल, 2-3 साल तो ऐसे ही निकले, लेकिन जो धारणाएं और जो नियम है,
तो 8-10 साल से ज्ञान में है फिर भी क्रोध पर नियंत्रण नहीं है,
उसको शांत नहीं करता।
पुरुषार्थ, बाबा ने
एक मैं हर किसी से करती हूँ ये क्वेश्चन, मैं हर किसी से करती हूँ जो सेंटर पे ज्ञान में चलते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं हो पाता उसका।
अच्छा, बाबा ने सबसे पहला महामंत्र, सबसे पहले महामंत्र क्या दिया है? ओम शांति का महामंत्र बाबा ने दिया हुआ है। जब हम योग लगाते हैं तो सबसे पहली शक्ति का अनुभव जो हम करते हैं वो शांति की शक्ति का अनुभव हम करते हैं। आप वहां पीछे चले गए जिन्होंने प्रश्न पूछा, सुन रहे हैं? अगर हम ये सोचते हैं हमें क्रोध पर नियंत्रण पाना है, क्रोध पर नियंत्रण पाना है, गुस्सा कम करना है, तो उस रीति से गुस्सा कम नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने ये कहा है कि विधि से सिद्धि प्राप्त होगा, विधि को हम फॉलो करेंगे सिद्धि हमें प्राप्त होगा, मेथड को हमें फॉलो करना पड़ता है तब हमें रिजल्ट मिलता है। तो विधि क्या है, गुस्से पर नियंत्रण पाने का विधि क्या है? शांति की अनुभूति करना। जैसे अगर कोई भी, जैसे इस कमरे में अंधकार है, डार्कनेस है, तो इस अंधकार को कैसे हम मिटाएंगे? लाइट जलाने से, कैंडल जलाने से, कोई भी किसी भी प्रकार के प्रकाश को हम लाते हैं तो अंधेरा मिट जाएगा। तो ऐसे नहीं कहेंगे ये अंधेरा चले जाओ, नहीं। ऐसे ही हम ये कंपेयर करते हैं कि जो ज्ञान, जो भी गुण है, शक्तियां हैं, वो प्रकाश है, और जो नेगेटिविटी है और वो गुण है, वो अंधकार है। अगर गुस्से रूपी अंधकार को मिटाना है तो फिर शांति रूपी रोशनी, शांति रूपी प्रकाश को हमें अनुभव करना होगा। मुझे आत्मा को गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि शांति की कमी के कारण से गुस्सा आ रहा है। क्रोध आत्मा का ओरिजिनल गुण नहीं है, शांति आत्मा का ओरिजिनल गुण है। तो शांति की कमी के कारण से मुझे क्रोध आ रहा है। जैसे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाता है तो बीमारियां बढ़ती हैं। पानी जितना हम पीते जाएंगे, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होता जाएगा, फिर बीमारियां कम, क्योंकि शरीर में 75% पानी है। ऐसे आत्मा के अंदर सातों ही गुण हैं। इन सातों ही गुणों की मात्रा जब कम हो जाता है तो उसके कनेक्टेड जो अवगुण है वो हम अनुभव करते हैं। क्रोध शांति के कमी के कारण से होता है, नफरत और घृणा प्रेम की कमी के कारण से होता है, फिर अज्ञानता ज्ञान की कमी के कारण से होता है, अशुद्धता अपवित्रता हेराफेरी, थोड़ा बहुत हेराफेरी जो करते हैं वो है पवित्रता की कमी के कारण से होता है, दुख सुख की कमी के कारण से होता है। तो ऐसे हर गुण का अपोजिट जो है, तो अगर मेरे अंदर नफरत घृणा बैठी है तो फिर उस पर हमें काम नहीं करना है, लेकिन हर आत्मा के प्रति स्नेह की भावना। बाबा प्यार का सागर है, प्यार अपने अंदर भरना है, ईश्वरीय प्यार, परमात्मा का प्यार हम बरते जाएं तो हर आत्मा के प्रति वो स्नेह की भावना जागृत होता है। ऐसे ही क्रोध पर विजय पाना है, शांति की अनुभूति। जब भी हम योग में बैठे, बाबा शांति का सागर है, शांति को जैसे मैं पी रही हूँ, अब्सॉर्ब कर रही हूँ, आत्मा को शांति से नहला रही हूँ, अपने अंदर शांति की शक्ति इतना भरते जाए, धीरे 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 वो क्रोध मिटता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा क्रोध पर पूरी तरह हम विजय पा लेंगे। ठीक है,
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। न्याय दीदी और कुछ बोलेंगे? जैसे सुमन बेन ने बताया, इसका भी आप प्रयोग करो। दो तीन मेथड्स और मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि काफी भाई बहनों का ये सवाल रहता है, सेंटर पर भी आते हैं कि हमारा गुस्सा कम नहीं होता है। छोटी छोटी युक्तियां हैं, जैसे गुलजार दादी हमेशा कहती थी कि जब भी आप पानी पीते हो तो उसको दृष्टि देके पियो। जैसे बताया कि मोर देन 75% हमारे बॉडी में पानी है। पानी एक ऐसा तत्व है प्रकृति का कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए बाबा की श्रीमत है ना कि हम बाहर का पानी भी नहीं पीते। इसका ही आप प्रयोग करो कि आप पानी पीने से पहले 7 बार ये संकल्प कर लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मन ही मन में आप उस पानी को दृष्टि दो। ये पानी आपने जो अंदर संकल्प किया वो उसने पूरा एब्सॉर्ब कर लिया। अब ये पानी पीने के बाद मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और आप बाबा की याद में पानी पी लो। दूसरी एक विधि ये है कि रात को जब आप सोने से पहले जब आपको नींद आती है, हम सब जानते हैं कि हम धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड से हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर एक्टिव होता है। सोते समय बाबा को गुड नाइट करने के बाद आप इसी संकल्प के साथ सो जाओ, मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा नेचर बिल्कुल शांत हो गया है, मैं एकदम शीतल हूँ, बनना है नहीं, मैं हूँ। इसी चिंतन के साथ आप सो जाओ। आप इसका प्रयोग करना और फिर क्या क्या परिवर्तन आता है, बहुत फास्ट परिवर्तन आएगा। और तीसरी मेथड है कि जब आपको बहुत गुस्सा आता है, वो आत्मा के कई जन्मों के संस्कार है, कर्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, तो आपको अंदर डालना पड़ेगा, जैसे सुमन बेन ने बताया, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर वो मन से याद करने से कम जा रहा है तो आप स्थूल विधि अपनाओ। आप लिखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लिखने से आपके अंदर वो बात एकदम उतरती जाएगी। मन ये एक स्थूल विधि है, लेकिन इस स्थूल विधि से काफ़ी भाई बहनों को बहुत फायदा हुआ है। आप 15-20 मिनट बैठ जाओ, दिन में एक बार या दो बार आप ये स्वमान लिखो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो आप पाएंगे कि आपको काफ़ी हद तक शांति के वाइब्रेशंस आपके अंदर जनरेट होते जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक मुझे लगता है कि क्रोध इसलिए आता है कि जब हमारी कोई बात नहीं सुनता है, आप अपना क्रोध आने का जो सारे क्यों आता है तो वो सारा लिखे और उसका अपोजिट करें। जैसे कि मान लो आपके परिवार में कोई नहीं मानते हैं, तो आप उनको गुड वाइब्रेशंस भेजे कि मेरे पड़ोसी, मेरे परिवार वाले, बच्चा, पति, जो भी है, वो मेरी बात मानते हैं। तो जब ये शुभ भावना भेजेंगे तो मैं समझती हूँ उससे भी आपको शांति के वाइब्रेशंस आएंगे और आपका मन शीतल हो जाएगा और आप क्रोध से विजय प्राप्त कर सकते हैं। दयाल भाई को कोई अनाउंसमेंट करना है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
ओम शांति। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, मुझे अभी फोन आया है, और नीचे में शांति वन में जहाँ अपना ऑफिस है, आप लोगों को मालूम है कला संस्कृति प्रभाग का ऑफिस नीचे शांति वन में कहाँ पर है? बहुत कम लोगों को मालूम है। हाँ, आवास निवास के सामने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आवास निवास के सामने विश्व परिवर्तन भवन, उसके फर्स्ट फ्लोर पे करीब करीब बहुत सारे विंग के ऑफिसेस हैं वहां पर। तो पहले पहले अपना ऑफिस आता है कला संस्कृति प्रभाग का, वहां पे संजय भाई एंड जगदीश भाई, दो भाई बैठते हैं। तो अभी मुझे फोन आया कि ये 2-3 दिन में जो भी भाई बहने मेंबर्स बने हैं उनकी रिसिप्ट नीचे तैयार है और उनका आईडी कार्ड भी बन के तैयार है। तो आप लोग जब नीचे जाएंगे तो अपनी रिसिप्ट और आईडी कार्ड विंग ऑफिस से लेते हुए जाएंगे। विंग ऑफिस का टाइम है 9-12 सुबह और शाम को 4-6। लेकिन आप उस बीच में अगर जाते हो तो फिर आप विंग ऑफिस में कांटेक्ट करना। जगदीश भाई का या संजय भाई का फोन नंबर है आपके पास में? या तो मैं बोलूं आप लिखेंगे? नीचे जा रहे हैं ना, सीधा स्टेशन पे जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग सीधा स्टेशन जा रहे हैं? नहीं, लेकिन जो भी गाड़ी यहां से जाती है ना, बस में जाएंगे ना? हाँ, तो बस पहले शांतिवन मेरे ख्याल से कुछ समय के लिए जाती है। अच्छा, आप संजय भाई से बात कर लेना, नंबर दूं? अच्छा, जिनको चाहिए नंबर लिखिए, ऑफिस का नंबर सबके पास होना चाहिए। हाँ, लिखिए संजय भाई का ऑफिस का नंबर 9904708-708-999999। मैं रिपीट करता हूँ, 9904708-999। संजय भाई ए एंड सी ऑफिस, आर्ट एंड कल्चर विंग ऑफिस, ACW भी लिख सकते हैं, या जो भी आपको लिखना है तो आप उनसे फोन पे कभी भी बात कर सकते हैं। और अच्छा है कि आप रिसिप्ट और आईडी कार्ड अपना लेके जाएं, तो ताकि आप लोगों को तुरंत आपके सेवा में काम आएगा। थैंक यू। ओम शांति। आप कौन से सेंटर से हैं भाई साहब? हाँ जी, प्रेम दीदी। हम प्रेम दीदी को दे देंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, जो ग्रुप लीडर है वो भी एक व्यक्ति जाके लेके कलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कलेक्ट कर पाए तो आपको बाई पोस्ट भी आ जाएगा।
ओम शांति दीदी। मैं रीवा एमपी से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी 6 महीने से हमने रेगुलर क्लास लेनी शुरू की, तो कभी कभी मुरली में ये पॉइंट आता है कि मतलब जॉब अब करने का समय नहीं है, है ना, कमाई करने का समय नहीं है, समय बहुत कम बचा है। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि जॉब करे कि नहीं करे, वो थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए तो उस हिसाब से मैं आगे कर सकूं। ओम शांति।
आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी?
जी।
कौन क्या?
या एमए कर रहे हैं, बीएड कंप्लीट किया है अभी।
ओके, ओके।
जी,
आपका नाम?
सुचिता ओझा। जी, रीवा एमपी से।
पहले तो आपको अपने आप से पूछना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हा? अगर आपके जीवन का लक्ष्य बाबा की सेवा करनी है, कि बाबा आपकी सेवा में मुझे जीवन लगाना है, तो उस आधार से जो बाबा की श्रीमत है कि समय बहुत कम है, अभी तो समय है ही नहीं, है ना। लेकिन इसमें और बात यह है कि आपके परिवार की क्या आपको देखनी है सिचुएशन, कि अगर परिवार में ज़रूरत है जॉब करने की, पेरेंट्स को उनकी ज़रूरत है, तो आप पढ़ाई करके जॉब के हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर से फ्री हो, माँ बाप को ज़रूरत नहीं है, तो वैसे भी समय कम है और कन्याओं को तो दूसरे घर जाना ही है, है ना। तो फिर आपको तुरंत डिसीजन लेना है कि बाबा मुझे आपकी सेवा में लगना है, तो वैसी तैयारी आप शुरू कर दो। एक तरफ पढ़ाई भी चलती रहे, दूसरे तरफ सेंटर लाइफ भी आप अनुभव करते जाओ, सेंटर पे सेवा करने जाओ, बहनों के साथ रहो, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। हाँ, अब मैं रह सकती हूँ, मैं सेवा कर सकती हूँ, तो फिर आप पढ़ाई छोड़ सकते हो। तो आपकी कैसी सिचुएशन है अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। लेकिन अगर पूरा आपको निश्चय सेवा में लगना है, तो फिर तो आज समय के हिसाब से अभी समय नहीं है, हमें बाबा की सेवा में लग जाना है, ठीक है।
ओम शांति दीदी। हम दिल्ली से हैं, लौकिक नाम किरण बहन, काफी टाइम से काफी सीनियर हैं, 20 साल से चल रहे हैं ज्ञान में। अभी भी हमारा एक प्रश्न रहता है कि हम जब भी किसी इंटेलेक्चुअल से बात करते हुए अपने ज्ञान का डिस्कशन करते हैं, हम सभी पॉइंट्स जो हैं अलग अलग पॉइंट्स पे उनको जो है कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो है कि आफ्टर एवरी 5000 ईयर्स एवरी सीन विल रिपीट, इवन ये भी कन्विंस कर लेते हैं कि हमारा 5000 साल का ड्रामा है और वो रिपीट होता है, अगेन देयर विल बी 4 हमारे सतयुग त्रेता द्वापर का, ये सब हो जाता है, सारे पॉइंट्स डिस्कस करके उनको कन्विंस किया जाता है, कर लिया जाता है। लेकिन ये पॉइंट पे जो है वो काफी रहता है कि कैसे हर सीन जो है वो, हालांकि हम पिक्चर का एग्जाम्पल देते हैं और हमें तो विश्वास है बाबा पे पूरा निश्चय है, लेकिन फिर भी डिस्कशन में जो है वो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा यरक जाते हैं कि कैसे जो है वो द सेम सीन विल रिपीट आफ्टर 5000 ईयर्स, ये कैसे कन्विंस किया जाए डिस्कशन में, ये हम थोड़ा जानना चाहते हैं। थैंक यू।
वही प्रश्न जुड़ा है उसके साथ या दूसरे प्रश्न है? ओके. वैसे तो बाबा का ज्ञान जब हम लेते हैं तो बाबा के ज्ञान में हमें तो निश्चय बैठ जाता है कि बाबा का ज्ञान है, तो बाबा ये कह रहे हैं रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है. लेकिन जब हम नयों को समझाते हैं, कुछ पॉइंट्स को ज्यादा एम्फसाइज ना करें तो अच्छा है, कि धीरे धीरे जब बाबा के ज्ञान में मुरली सुनना शुरू होता है तो उनको जब निश्चय बैठ जाता है बाबा के ज्ञान में, बाबा में निश्चय बैठ जाता है, तो फिर हर चीज उनको स्वीकार करना बहुत इजी हो जाता है. कहीं ऐसे आत्माएं हैं तो सात दिन का कोर्स जब कराते हैं, कुछ बातों में उनको विश्वास होता है, कुछ बातों में उनको विश्वास नहीं भी होता है, तो उनको उसको वहां ही छोड़ देना है. तो उनको ये बताना है कि जिन बातों में आपको विश्वास है तो उसके आधार से आप मेडिटेशन करना शुरू कर लीजिए, मुरली सुनना शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे बाकी जो बातें हैं वो स्पष्ट आपको होता जाएगा. तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही हर बात क्लियर करने की जैसे जिद नहीं करना है. तो ठीक है, उनको आत्माओं, बाबा कहते हैं नब्ज को देखो, जिन बातों में उनको इंटरेस्ट है उनको उसके बारे में ज्यादा बताना है. अगर बाबा कहते हैं ना, अगर कोई शांति की प्यास की आत्मा है, शांति चाहिए तो प्रेम देंगे तो वो संतुष्ट नहीं होंगे, तो उनको नब्ज देख करके उनको उनके उनको क्या किस में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो फिर उस अनुसार उन आत्माओं को गाइड करने की जरूरत है. ठीक है
न्याजी, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो जैसे सुमन बेन ने कहा कि जो आत्माएं आती है ना उसको पहले क्या चाहिए वो आपने दे दिया, ये बात का पूरा ध्यान रखना है. और दूसरी बात कि बाबा के जो भी ज्ञान के टॉपिक्स हैं हर एक का अलग अलग समय अनुसार उसका यूज करना होता है. तो जो ड्रामा का ज्ञान है, बाबा ने रिपीटेशन का ज्ञान क्यों दिया? एक तो रिपीटेशन का ज्ञान इसलिए दिया है कि हम बच्चों को पुरुषार्थ में सरलता आ जाए. जैसे मान लो कोई विघ्न आया तो हम डर जाते, अरे ऐसी बात अब क्या होगा, तुरंत ड्रामा में था, आ गया, उसको हमने पार किया था, अभी भी पार हो जाएगा. दूसरा, बाबा रिपीटेशन का ज्ञान इसलिए देते कि बच्चे अनेक बार रिपीट किया है, अनेक बार आप देवता बने थे, अनेक बार आपको देवता बनना है, नथिंग न्यू. और ड्रामा का ज्ञान है, बाबा ने कई बार कहा है ढाल की रीति से यूज करना है. जैसे युद्ध भूमि में जाते हो तो एक होती है तलवार और दूसरा होता है ढाल. तलवार से आप लड़ाई करते हो, ढाल से क्या करते हो, अपने आप को सेव करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, उससे लड़ाई नहीं करते, उसका काम है ओनली टू प्रोटेक्ट. तो ड्रामा का ज्ञान अपनी स्वस्थिति को प्रोटेक्ट करने के लिए है. जब भी कोई बात आती है ड्रामा हो गया, अनेक बार हुआ है, हो जाएगा, तो हम अपनी स्वस्थिति को संभाल पाते हैं. ड्रामा कल्याणकारी, अनेक बार मैंने पार किया, मेरे अंदर शक्ति है, आ जाएगी. तो परिस्थिति के सामने आप उसको प्रोटेक्शन के रूप में यूज करो. पुरुषार्थ में तो आपको ऐसे ही करना है कि अब भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूं मेरी फिल्म, मुझे पूरा पुरुषार्थ करना है. तो नयों को आप ऐसी पॉइंट्स ज्यादा एम्फेसाइज करो बजाय एक टिपिकल पर्टिकुलर वर्ड रिपीटेशन, उसको नहीं, ऐसे यूज करके उसको पक्का कराओ. धीरे धीरे फिर वो जब रिपीटेशन सुनेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा उसका माइंड.
जैसे कि आपने, जैसे बाबा ने कई बार बोला है ना, जो सत्य है उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. बाबा कहते हैं ना कई बार डिबेट नहीं करना है, बहुत प्यार से उसको आप समझाएंगे. और कई बार क्या है, आपको कन्विंस नहीं हो रहा है करके आप उसको ये करते तो तकलीफ होता है, लेकिन
जैसे दीदियों ने कहा ना, तो ऐसे उसको बहुत प्यार से आप दूसरी बातें समझाएंगे तो ये बात भी वो समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उनको कुछ दीदी हम ये कह रहे थे कि मेन पॉइंट्स डिस्कस करके हम उनको मेडिटेशन के लिए अपने कोर्स के लिए ही तो तैयार कर रहे होते हैं, है ना, इंटेलेक्चुअल्स से बात करके या कुछ है, तो उस समय जो है ये इस तरह का कोई डिस्कशन आ जाता है या कुछ है ना, तो उनका जो फेथ है वो बाकी पॉइंट से भी पीछे हो जाता है और वो फिर उसमें आना इसमें इंटरेस्टेड कम हो जाते हैं।
तो उस समय ऐसी पॉइंट्स आपको नहीं लेनी है, ऐसी पॉइंट्स लेनी है जो उसको टच हो जाए और एक बार वो स्टार्ट हो जाए, जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में जरूरत है।
कई बार ऐसा होता है मेन पॉइंट सुनी हुई होती है और
हुई होती है तो बात अलग है,
उसमें ऐसा होता है ऐसा होता है तो कन्विंस करते हैं,
तो उसको ऐसे तरीके से कन्विंस करके फिर उसको बोलो कि आप आगे बढ़ के देखो आपका माइंड क्या कहता है, एक्सपीरियंस करके आप देखो,
है जैसे ना कई बार ऐसा होता है कि
लास्ट क्वेश्चन।
ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति दीदी जी, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ आपसे, बहुत बार मतलब मेरा अमृत बेला मिस हो जाता है, बहुत बार बीच बीच में फिर भी मैं योग करती हूँ अमृत बेला में, फिर भी जिस दिन मेरा मिस हो जाता है ना उस दिन में ना मतलब दुखी हो जाती हूँ अंदर से, और फिर बाबा को कहती रहती हूँ दिन भर में, क्योंकि बाबा काफी मुरली में बोलते हैं ना कि बच्चे मुझे चलते फिरते याद करो, तो बस जिस दिन मेरा अमृत बेला मिस हो जाता उस दिन सारा दिन बाबा से बातें करती रहती हूँ, ऐसे बातें करती रहती हूँ जैसे कि अपने बाप से बात कर रही हूँ, फिर बस फिर भी मैं सोचती हूँ कि बाबा आज तो अमृत बेला में की नहीं, मुझे बहुत दुख लग रहा है, मतलब फिर बच्चों को भी बीच बीच में डांट देती हूँ और फिर रोती रहती हूँ अंदर ही अंदर। आज उषा बहन जी से मेरी मुलाकात हुई, मुझे कितनी खुशी हुई, और गुवाहाटी में मैंने शिवानी बहन जी को भी देखा लेकिन उनसे मिल नहीं पाई, दूर से देखी, आज मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं मधुबन में आकर बाबा के सामने बात कर रही हूँ, इसीलिए बस इसी के बारे में मुझे पूछना था कि मैं मिस हो जिस दिन अमृत बेला मुझसे छूट जाता है तो मैं बहुत ही दुखी होती और सेंटर में जाती हूँ तो बोलती हूँ बाबा आज मैं सुबह नहीं उठ पाई, तो इसके बारे में बताइए दीदी जी।
नया दीदी,
पहली बात तो अमृत वेला तो हम ब्राह्मण जीवन में आधार है हम सभी का, लेकिन अमृत वेला बैठिए, अमृत वेला मिस होने का कारण हम जानते हैं कि बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है कि अगले दिन कोई ना कोई हमसे अवज्ञाएं हो जाती है या तो अलबेलापन हो जाता है, तो माया दूसरे दिन पनिशमेंट देती है, उठने नहीं देती है। तो दिन भर में आप अपने चेकिंग करो कि कोई अवज्ञा ना हो, श्रीमत का अच्छी तरह से पालन हो, फिर भी कभी मिस हो गया, कभी रात को लेट हो गया, कुछ भी हुआ मिस हो गया एनी रीजन कोई भी कारण से, पहली बात मिस हो गया प्यार से बाबा को कहो बाबा अमृत वेला मिस हुआ, ठीक है। जब आप उठते हो तभी पावरफुल शक्तिशाली योग कर लो, जितना टाइम है 15 मिनट है आधा घंटा, इतना पावर कर लो बाबा को प्यार से कि बाबा जो अमृत वेले शक्ति देनी है आपको मुझे अभी दे देनी है, ठीक है। फिर ये संकल्प आप निकाल दो कि मेरा अमृत वेला मिस हो गया, वो एक मिस हुआ फिर उसके कारण उनकी असर या आपका विचार पूरे दिन भर के सारे कार्य को प्रभावित करता है तो घाटा हो जाएगा ना, वो एक घाटा है उस घाटे को वहीं पूरा कर दो, बाबा से सॉरी करके योग कर लिया, बस बाबा अब आज के दिन में मैं इतनी तपस्या करूंगी, इतनी कमाई जमा करूंगी कि उससे डबल मेरा जमा हो जाएगा, और खुशी से पुरुषार्थ करो, लाइट हो जाओ। तो आपको धीरे धीरे कभी हो जाता है, कोई का भी हो जाता है, माया करा देती है, कोई बात नहीं, दोबारा उसको रिपीट नहीं करो, बाबा को बता दिया, फिर आगे से उस दिन ज्यादा पुरुषार्थ करो, खुशी में रहो, तो फिर अमृत वेला कम मिस होगा और सारे दिन की दिनचर्या पर ध्यान रखो, ठीक है?
हो गया बहुत सा,
अभी समय भी।
अभी लास्ट क्वेश्चन, एक बहन।
ओम शांति दीदी, आप लोगों ने बहुत अच्छी पालना दी, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत थैंक्स, बहुत ही अच्छा लगा। मैं दिल्ली से उषा नागपाल, मेरा प्रश्न ये है कि मैं गीत वगैरह लिखती हूँ और बाबा के गीत बनाती हूँ और कविताएं लिखती हूँ, बाबा के मुरली पे भी लिख लेती हूँ और फिर मेरा मन करता है कि उसे मैं सुनाऊं। तो बाबा तो कहते हैं कि इच्छा मात्र मां विद्या बनो, कभी दीदी मौका दे देते हैं, कभी टाइम नहीं होता। तो मैं ऐसा नहीं सोचती कि भाई आज नहीं हुआ, पर अंदर से इच्छा बनी रहती है कि मैं सुनाऊं, सबको सुनाऊं। तो क्या दीदी, क्या ये गलत है? और फिर एक क्वेश्चन और है कि मेरा ना गीतों पे योग बहुत अच्छा लगता है और बाबा तो कहते हैं कि बीज रूप अवस्था का अनुभव करना है, तो उस पर मैं कम कंसंट्रेट कर पाती हूँ और गीत मुझे बाबा के बड़े प्यारे लगते हैं। मैं अपने से खुद से फिल्मी गीतों को ट्रांसफर करके बाबा के गीत बना लेती हूँ, वैसे भी कुछ कुछ कविताएं लिख लेती हूँ। तो दीदी मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए।
सुमन दीदी,
बाबा ने तो ये स्लोगन हम सभी को दिया है, इच्छा मात्रम अविद्या, वो तो अंतिम स्थिति होता है। जितना हम इच्छाओं से मुक्त होते जाएंगे उतनी स्थिति हमारा अच्छा होता जाएगा। हाँ, लिखने के का अभ्यास है, इतना टैलेंट है आपके अंदर, तो लिखे जरूर, लेकिन ठीक है, अगर ड्रामा अनुसार मिल जाता है अपॉर्चुनिटी तो जरूर सुनाएंगे, उसमें भी संतुष्ट है ना। तो इच्छाओं को ऐसे हमें दबाना नहीं है, उसके जगह पर हमें क्या लाना है, संतुष्टता है ना। अगर मिले, मौका मिले तो भी खुश, नहीं मिले तो भी खुश है ना। तो ऐसा नहीं कि इच्छा को दबाओ दबाओ नहीं करने, इच्छा जागृत हो रहा है लेकिन उसको दबाने की कोशिश कर रहे, नहीं, वहां स्ट्रगल हो जाता है ना। तो नहीं, संतुष्ट रहना, बाबा ने ये कहा हुआ है, संतुष्ट आत्माएं और भी सभी गुणों को वो अट्रैक्ट करती है। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गुण है संतुष्टता। तो इसलिए हर हाल में हमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए है ना। तो ये एक ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा की परिकाष्ठा है। और दूसरी बात, जो योग गीतों के आधार से योग सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार हमें खुद को मेहनत करना नहीं पड़ता है शब्दों को ढूंढने में। बाबा योग गीत में जो शब्द आ रहे हैं तो उसके आधार से योग बहुत इजीली लग जाता है। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं हमें निराधार बनना है, किसी का आधार का वो जो हैबिट नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो संबंध है बाबा के साथ वो बहुत ही पर्सनल और गहरा होना चाहिए। किसी व्हाइट लाइट के बिना भी हमारा योग लगना चाहिए, गीतों के बिना भी योग लगना चाहिए, संगठन के बिना भी योग लगना चाहिए, भीड़ में हो भी हमारा योग लग जाना चाहिए। ऐसा अभ्यास हमें करने की जरूरत है और लक्ष्य रखेंगे तो जरूर वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो चीज अच्छी लगती है तो उसी को हम फॉलो करते रहेंगे, योग में जब भी बैठते हैं योग गीत लगा करके बैठने की आदत पड़ जाती है, लेकिन लक्ष्य लेकर के बैठना कि नहीं, आज जब मैं आधा घंटा योग करूंगी तो गीतों के बिना मैं योग करूंगी। तो जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा फिर आपको फिर अच्छा लगने लगता है। जब यहाँ आरसीस बड़ी बहनों की का जब भट्टी होता है, विदेशी बहनों की भट्टी होती है, तो उसमें एक दिन पूरा ऐसा उनका शेड्यूल होता है, उनको कोई भी गीत, जैसे वहां दादी स्कॉटेज के ऊपर के वहां उनका उनकी भट्टी होती है, निराधार बनने का अभ्यास वो लोग करते हैं। सुबह मुरली सुन लिया, ब्रेकफास्ट के बाद जो वो लोग योग करने बैठते हैं तो वो ना गीत सुन सकते हैं, ना फिर मुरलियों का आधार ले सकते हैं, ना कुछ भी नहीं। कभी कभी लगता है ना कि बाहर प्रकृति में बैठ जाए तो योग अच्छा लगेगा, पेड़ के नीचे बैठ जाए, वहां प्रकृति में बैठ जाए। नो, प्रकृति का भी आधार नहीं लेना है। एक दिन पूरी तरह वो निराधार होकर के योग का अभ्यास करते। ये अभ्यास जितना हम अभी करते हैं तो विनाश काल में वो हमारे लिए बहुत मदद मिलता है उससे। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है। मेरा नाम वर्षा है, दिल्ली पीतमपुरा से। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि निराकारी और अशरीर स्थिति में क्या अंतर है?
निया दीदी,
वैसे तो बाबा के याद की जो स्थिति है, बाबा अलग अलग स्थितियों का अनुभव करने के लिए हमें कहते हैं। निराकारी स्थिति है वो संपूर्ण आत्मा जब बाबा की याद में बिंदु बिंदु में एकाग्र हो गई, बस इसको निराकारी स्थिति, बीज रूप स्थिति भी कह सकते हैं, जिसमें और कोई संकल्प नहीं है, बस आत्मा बाबा के प्यार में मगन हो गई। बाबा कहते बच्चे अशरीरी स्थिति का अभ्यास करो। अशरीरी स्थिति माना शरीर में तो आप हो, लेकिन शरीर में होते हुए अशरीरी स्थिति का, तो इस अभ्यास में आप ये कर सकते हो कि देह में होते हुए भी मैं आत्मा देह भान से न्यारी, ब्रकुटी के बीच में आत्मा सितारा है, लाइट। देह में हूं, देह में होते हुए भी मुझे देह के भान का कोई अनुभव नहीं, डिटेच। चलते फिरते भी आप अशरीरी स्थिति का अभ्यास कर सकते हो आत्मा समझकर, फिर आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, आपका ध्यान आत्मा के स्वरूप, आत्मा की स्थिति में इतना मगन हो जाएगा कि आप देह में हो, देह में होते हुए भी देह के बांध से परे। ये अशरीर स्थिति है। शांति।
ओम शांति। सभी को